बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद और सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहती शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है बरतानिया के पार्लियामानी इलेक्शन का नतीजा। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बरतानिया के पार्लियामानी इंतखाबात के नतायज, कंजर्वेटिव पार्टी की जीत के अवामिल और आलमी सियासत पर इसके मुमकिन असरात का जायजा लेंगे, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
बरतानिया के पार्लियामानी इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी ने 331 नशस्तें जीतकर फतह हासिल कर ली है, जबकि उनकी हरीफ लेबर पार्टी 232 नशस्तें हासिल करने में कामयाब हो सकी है। पिछले 33 साल में पहली बार है जब कंजर्वेटिव पार्टी को पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत हासिल हुई है। उधर स्कॉटलैंड में SNP ने 59 में से 56 सीटें लेकर लेबर पार्टी का सफाया कर दिया है, जिस पर लेबर पार्टी के सरबराह एड मिलीबैंड ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने पार्टी की क्यादत छोड़ दी है। एड मिलीबैंड का कहना है कि पार्टी को इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में वो सबकत नहीं मिली जिसके वो ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने कहा है कि पार्टी को कौम परस्ती की लहर ने डुबो दिया है। सन 2010 में 50 नशस्तें हासिल करने वाली लिबरल डेमोक्रेट्स के लिए भी हालिया इंतखाबात के नतायज अच्छे साबित नहीं हुए और वो 8 नशस्तें ही हासिल कर सकी है। इंतखाबात में कामयाबी के बाद डेविड कैमरून ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के हवाले से रेफरेंडम करवाने और स्कॉटलैंड को अख्तियारात की मुंतकली के वादे को पूरा करने का ऐलान भी किया है। उन्होंने मुल्क की नई काबिना के चंद नामों का ऐलान भी कर दिया। बरतानी वजीर आजम और कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह के दफ्तर की जानिब से जुमे के दिन जारी होने वाले बयान में आया है कि उस पार्टी के सीनियर रहनुमा फिलिप हैमंड बदस्तूर वजीर खारजा के ओहदे पर काम करते रहेंगे। बरतानी वजीर आजम ने यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के निकलने के बारे में रेफरेंडम कराए जाने का जो वादा किया है, उसके पेश नजर फिलिप हैमंड की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। डेविड कैमरून ने कंजर्वेटिव पार्टी की सीनियर रहनुमा थ्रीसा मेरी मे को भी एक बार फिर वजीर दाखिला के ओहदे पर बहाल रखा है। बिलाशुबा उनकी वजारत के दौरान उनका एक अहम मामला तारिकीन वतन के मसले पर काबू पाने और इंतहा पसंदी के मुकाबले से मुतालिक डेविड कैमरून के वादों को अमली जामा पहनाना होगा। बरतानी वजीर आजम डेविड कैमरून ने अपनी सबका काबिना में वजीर खजाना और वजीर दिफा को नई काबिना में भी उनके ओहदों पर बरकरार रखा है। बरतानवी जराये का कहना है कि वजीर आजम डेविड कैमरून एक दो रोज के अंदर काबिना के बाकी अरकान के नामों का भी ऐलान कर देंगे और इसके लिए पार्टी के अंदर सलाह मशवरे का अमल जारी है।
नाज़रीन, जैसे कि आपने हमारी रिपोर्ट में मुलाहिज़ा फरमाया, बरतानिया के पार्लियामानी इंतखाबात के नतायज ने बहुत से अंदाजों को गलत साबित कर दिया। जहां एक तरफ कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसी पोजीशन हासिल हो गई है कि उसको हुकूमत साजी के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वहीं लेबर पार्टी की शिकस्त से ज्यादा लिबरल डेमोक्रेट पार्टी का 8 सीटों पर ही सिमट जाना हैरत अंगेज है। और इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज स्कॉटिश नेशनल पार्टी को हासिल होने वाली पोजीशन है, जो तीसरी पोजीशन पर आ गई है। किसी भी मुल्क में इलेक्शन के नतायज अवाम के रुझान की निशानदेही करते हैं और आमतौर पर इसी नतीजे की बुनियाद पर यह समझा जाता है कि मुल्क के अवाम किस पार्टी के साथ हैं और उन्हें किस जमात की पॉलिसियां मंजूर हैं और किन जमातों की पॉलिसियों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। किसी हद तक तो इस बात की तायद की जा सकती है, लेकिन 100% ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात हार और जीत के असबाब और अवामिल ज़रा मुख्तलिफ भी होते हैं। जिस सियासी जमात को ज़्यादा सीटें मिली हों, ज़रूरी नहीं है कि अवाम उसकी पॉलिसियों से भी 100% मुत्तफिक हों। यह भी मुमकिन है कि उसकी हिमायत से ज़्यादा उसके मुखालिफीन की मुखालिफत का जज्बा या कोई और मुहर्रिक अवाम को उसकी तरफ खींच के लाया हो। बहरहाल, हार जीत के बहुत से अवामिल होते हैं और आज के प्रोग्राम में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बरतानिया के पार्लियामानी इलेक्शन के नतायज के अवामिल क्या रहे हैं, کنزرویٹو پارٹی کو اگر برطانیہ کے عوام میں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ لیبر پارٹی سے برطانیہ کے عوام کی دوری بڑھی ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کی پوزیشن اتنی خراب ہونے کے اسباب کیا ہیں کہ جو پارٹی پچھلے الیکشن میں تیسرے نمبر پر تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس بار بھی اس کی یہ پوزیشن کم سے کم باقی رہے گی، 8 نشستوں پر ہی سمٹ کر رہ گئی، اور اس کے برعکس اسکاٹش نیشنل پارٹی کو حاصل ہونے والی پوزیشن کس بات کی عکاسی کرتی ہے، اس کا بھی ہم آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ ڈیوڈ کیمرون سے برطانوی عوام کی توقعات اور انہیں درپیش چیلنجوں کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، اور عالمی سیاست اور تغیرات پر برطانیہ کے پارلمانی الیکشن کے نتائج کے متوقع اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہمارے آج کے پروگرام میں لندن سے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر واسطی، دہلی سے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار سورب کمار شاہی، اور اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار باقر سجاد حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے طاہر واسطی صاحب سے جو اس وقت ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ واسطی صاحب السلام علیکم۔ جی جناب واسطی صاحب، برطانیہ کے پارلمانی انتخابات کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے، اب ایوان اقتدار میں کیا ہو رہا ہے؟
ایوان اقتدار میں اس وقت جو ہے منسٹریز کی بانٹ ہو رہی ہے، لوگوں کو منسٹر بنایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو ان کے عہدے پر برقرار رکھا گیا ہے، اور عوام جو ہیں وہ محو حیرت ہیں، خاص طور پر جو تارکین وطن ہیں وہ بہت محو حیرت ہیں، چونکہ اس کی تمام میجورٹی نے ووٹ دیے تھے لیبر کو، اور لیبر جو ہے اس الیکشن میں جیسا کہ آپ اپنے تجزیے میں فرما رہے تھے بہت بری شکست جو ہے اس کو لینی پڑی ہے، اور لبرل ڈیموکریٹ کو اس سے بھی بری شکست ملی ہے، اور کنزرویٹو کو سمپل میجورٹی مل گئی ہے۔ اب ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نتائج جو ہیں ان کو بہت مختلف انداز سے ہم انالائز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی بہت ساری وجوہات پر ریٹروسپیکٹو طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا، لیکن ہم تمام لوگ شاید اس بات پر متفق ہوں جیسا کہ آپ کے تجزیے سے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ الیکشن کے نتائج آنے تک کسی کو ان نتائج کا یقین نہیں تھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا، اور جو تمام جو ہنگ پارلیمنٹ ہے وہ وجود میں آئے گی، ایگزٹ پول اور تمام جو پولنگ کے انالیسز ہو رہے تھے اس رات بھی، اس دن بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ نیک ٹو نیک ہوگا اور ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اور ورسٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ بننے کو آ رہی ہے، لیکن نتائج نے سب کو پریشان کر دیا۔ جتنے بھی انالیسز کرنے والے مختلف چینلز پہ ہم دیکھ رہے تھے ان تمام میں سے کسی کے بھی جو نتائج ہیں وہ اچھے، وہ بالکل جو ان کے تجزیے تھے صحیح ثابت نہیں ہوئے۔ اس کی میں سمجھتا ہوں جیسے آپ ریٹروسپیکٹلی میں دیکھوں تو بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو جیسے ہم یہاں لفظ استعمال کرتے ہیں گورو نے، انگلش پارٹی جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی ہے، اور یہ ایک بڑا سمپل سا میں ایک تجزیہ اپنا پیش کر رہا ہوں کہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے جس کو یہاں پہ رچ کی پارٹی کہا جاتا ہے، اس کو برطانیہ میں سمپل میجورٹی مل گئی ہے، اور لیبر پارٹی جس کو پورٹری کیا گیا رسک کی پارٹی، کہ اس کی جو خرچ کی جس طرح سے انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے تارکین وطن کو اور اپنے بارڈرز کی پالیسی اپنائی ہے اس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے، اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں آج برطانیہ جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور جو امیگرنٹس کی یہاں پر ایک تارکین وطن کی جو ایک بہت زیادہ تعداد یہاں پر آ کے جمع ہو گئی ہے یہ لیبر کی پالیسی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ان کے جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں یورپین یونین کے اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اب اگر آپ اس کا مقابلہ، اسی سوچ کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ میں جا کے دیکھیں تو انہوں نے بھی ایک گروپ بنا لیا ہے، اور یہ گروپ پالیٹکس ہو گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے لیے جس طرح سے مختلف تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ ورس الیکشن ثابت ہوگا، ہنگ پارلیمنٹ بن گئی، میرا خیال ہے کہ جو پارلیمنٹ اس وقت بنی ہے یہ بھی ورسٹ ثابت ہوگی، اس وجہ سے کہ کسی بھی پارلیمنٹ میں اگر کسی ایک مائنورٹی گروپ کی اس قسم کی آواز سامنے آئے تو اس سے یہ لگتا ہے कि वो मेजॉरिटी ग्रुप से खुश नहीं है और वो मेजॉरिटी ग्रुप को वो कुछ नहीं करने देंगे जो कुछ वो करना चाहते हैं। अब इसकी दो सूरत हाल है। एक सूरत हाल तो ये है कि ये अपनी आवाज़ को कहेंगे कि जनाब, जैसा कि वो कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड के जो हकूक हैं वो पूरे दिए जाएं, उनको ज़्यादा पैसे दिए जाएं, ऑस्टेरिटी की जो मूव है उसे ख़त्म किया जाए और जो वहाँ पे फीस है और जो बजट है उसको बढ़ाया जाए और टैक्स जो है वो यहाँ पे बढ़ाया जाए और उन पर वहाँ खर्च किया जाए। अब अगर ये बात वो सोचते हैं, क्योंकि ये मिडिल क्लास लेबर की पार्टी है और मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है और इन्होंने ज़्यादा लेबर की ही सीट्स ली हैं, तो जो बात मुझे समझ में नहीं आती है एज ए तजियाकार, कि ये ग्रुप यही सोच उस मिडिल क्लास तबके के लिए जो मैनचेस्टर में है, जो लिवरपूल में है, जो बर्मिंगम में है, उसके लिए ये सोच क्यों नहीं रखता कि उसके उस तक भी यही खुशहाली और यही चीज़ें पहुंचने चाहिए, एनएचएस के वही फायदे उन तक पहुंचने चाहिए और वो दूसरे फायदे जो वो सिर्फ स्कॉटलैंड को देना चाहते हैं या स्कॉटलैंड की मिडिल क्लास को देना चाहते हैं उसको मिलने चाहिए। लेकिन जब वो स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो वो ये समझते हैं कि स्कॉटलैंड में सब मिलियनर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो फायदे स्कॉटलैंड में लेके जाना चाहते हैं वो स्कॉटलैंड के मिलियनर तक भी पहुंचेंगे और गरीब तक भी पहुंचेंगे एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश पीपल, जो बेचारे इंग्लिश नहीं हैं और मिडिल क्लास हैं, यहां से वो चीजें वहां मुंतकिल की जाएंगी। तो इस सूरत हाल में इंग्लिश और स्कॉटिश की एक जो है खींचातानी शुरू होगी, जो मैं समझता हूं इन रिजल्ट्स का नतीजा होगी और बरतानिया की डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक और मोहलक साबित होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया वासी साहब, और चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहां हिंदुस्तान के सीनियर सहाफी और मुमताज तजिया निगार सौरभ कुमार शाही साहब मौजूद हैं। शाही साहब अस्सलाम वालेकुम। जी शाही साहब, बरतानिया के पार्लियामानी इलेक्शन के नतायज के बारे में आपका तजिया क्या है?
वालेकुम अस्सलाम। देखें, रिजल्ट्स जो हैं वो जैसा कि उन्होंने बताया अभी लंदन से दोस्त ने, कि चौंकाने वाले हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह के इतना मतलब वन साइडेड एक अंतिम में जो है वो रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें जो मेरे हिसाब से जो निकल के आई हैं, उसमें एक सबसे बड़ी फैक्टर जो है वो इस इलेक्शन की, वो मैं मानता हूँ लिबरल डेमोक्रेट्स को। लिबरल डेमोक्रेट्स ने अपनी पॉलिसीज़ पिछले कम से कम 7-8 सालों में उनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं उसको एक तरीके से अगर कंजर्वेटिव पार्टी के पॉलिसीज़ को देखें तो दोनों के बीच फ़र्क करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था वोटर्स के लिए, और उन्होंने साथ में मिलकर हुकूमत भी चलाई। तो देखें, ये हमेशा दुनिया में होता आया है कि अगर आपकी एक कोर आइडियोलॉजी है और जब आप उस कोर आइडियोलॉजी से डिपार्ट करते हैं, यानी कि लिबरल डेमोक्रेट्स की जो कोर आइडियोलॉजी थी उससे वो उन्होंने डिपार्ट किया और वो राइट के तरफ यानी कंजर्वेटिव के तरफ मूव किया उन्होंने, तो जो दो यानी उनके जो कोर वोटर्स थे उनको ये लगा कि एक तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें बिट्रेयल देखने को मिला। आप उनके कमेंट्रीज सुनिए या उनके व्यूज सुनिए तो आपको लगेगा कि एक बिट्रेयल उनको लगता था कि जिन वैल्यूज़ को लेकर लिबरल डेमोक्रेट्स खड़े होते थे उन वैल्यूज़ के साथ अब वो नहीं रहे और कहीं ना कहीं अब वो जा रहे हैं टूवर्ड्स राइट। और जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं यानी जो नए वोटर्स हैं जिसको कि लिबरल डेमोक्रेट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी, उनको ये लगा कि अगर लिबरल डेमोक्रेट्स जो हैं वो कंजर्वेटिव के टीम बी हैं तो क्यों ना टीम ए को ही वोट किया जाए, टीम बी को वोट करने से क्या फ़ायदा। तो एक बहुत बड़ा वोट जो लिबरल डेमोक्रेट्स का था वो इस तरह से आउट हुआ। दूसरी तरफ अगर आप लेबर को देखें तो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो देखें मिडलैंड और सदर्न इंग्लैंड में जो कुछ ऐसी सीट्स हैं जिनको मार्जिनल सीट्स कही जाती थी, जो जैसा आपको पता है इंग्लैंड खासकर जो मिडलैंड और साउथ ईस्ट इंग्लैंड है, लंदन को अगर हटा दें उसके अलावा तो वो हमेशा से कंजर्वेटिव रही है और वहाँ एक तरीके से कंजर्वेटिव हब है वो, लेकिन वहाँ पे कुछ मार्जिनल सीट्स होती थी जहाँ पर लेबर पार्टी 1% 1.5% 2% वोट के फर्क से वो सीटें निकाल लेती थी। इस बार वो मार्जिनल सीट्स जो है वो वैनिश हो गई कम्प्लीटली, यानी वहाँ पे बिल्कुल एक पोलराइजेशन हुआ और वो जो थ्री वे पोलराइजेशन होता था वो ना होके टू वे पोलराइजेशन हुआ और वहाँ पे नुकसान जो है वो लेबर को झेलना पड़ा। स्कॉटलैंड का तो जैसा कि उन्होंने बताया भी कि वहां तो बिल्कुल पॉलिटिक्स ही अलग हो गई, तो यानी इनके जो कोर एरियाज थे स्कॉटलैंड वहां पर ये बिल्कुल खत्म हो गए। वेल्स में इन्होंने इस बार अपनी जान बचा ली है, लेकिन वहां भी जिस तरह से वोट बने हैं यूकिप के, वो बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है आने वाले सालों में इनके लिए। लेकिन जो मिडलैंड और साउथ इंग्लैंड में इनकी जो हाल हुई है, जो मार्जिनल सीट भी ये बचा नहीं पाए हैं, वो इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। क्यों? अगर स्कॉटलैंड में यही पॉलिटिक्स सर्वाइव कर गई और एसएनपी एज अ पार्टी वहां पे सबसे बड़ी पार्टी रह गई आने वाले और इलेक्शंस में, तो आप ये मान के चलिए कि बाकी बचे ग्रेट ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड का जो इलाका है उसमें से उसके रहते हुए लेबर द्वारा कभी हुकूमत नहीं बना पाएगी। दूसरी ओर अगर आप देखें कंजर्वेटिव्स को, तो उनकी भी पॉलिसी आप देखें, उनको एक डायरेक्ट चैलेंज जो है यूकिप की तरफ से मिल रहा था, क्योंकि यूकिप की जो पॉलिसीज थी वो एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी, यूरोसेप्टिक पॉलिसी जो उनकी, यूरोस्केप्टिक पॉलिसी जो उनकी रही है, उन सारी पॉलिसीज के कारण कंजर्वेटिव पार्टी इतनी डर गई कि जितनी वो राइट थी नहीं उससे ज्यादा वो राइट हो गई। यानी वो राइट थे पर वो राइट से टूवर्ड्स अल्ट्रा राइट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उसी एक पूल कंजर्वेटिव वोटर में से उनको भी वोटर्स अट्रैक्ट करने थे जहां से यूकिप अपने वोटर्स को अट्रैक्ट कर रही थी। ये भी एक बहुत ही इसकी जो है आने वाले दिनों में इंटरनेशनल जो इसके असर होंगे वो बहुत बुरे होने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक यूकिप अपने तो उसको एक ही सीट मिली है, लेकिन एक ही सीट मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने नरेटिव को पूरे कंट्री में एक राइट विंग शिफ्ट दी है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये अपने आप को जब मैनिफेस्ट करेगी तो कई सारे प्रॉब्लम्स हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद में बाकिर सज्जाद साहब हैं, पाकिस्तान के मुमताज सहाफी और तजिया निगार। जी बाकिर सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। सज्जाद साहब, आपका तजिया क्या है बरतानिया के पार्लियामानी इलेक्शन के नतीजे के बारे में?
वालेकुम सलाम। अरे जिस तरह के बाकी दोस्त भी कह रहे हैं कि मतलब जितने भी वो एग्जिट पोल्स थे उनके और जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके बरक्स रिजल्ट्स आए। अब ये देखना पड़ेगा कि मतलब इसके हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, खास तौर पे ये जो जो यूरोपियन यूनियन के हवाले से अब इनकी जो फ्यूचर है उस पर इसके क्या असरात पड़ेंगे। मेरी नज़र में यहाँ पर, क्योंकि मैं इसका ज़रा सा एक फॉरेन पर्सपेक्टिव से ज़रा देखना चाहूँगा कि इनके लिए जो बड़े चैलेंजेस जो सामने आ रहे हैं वो इस वक्त वो है जो इन आउट वाला जो उनका वो एक रेफरेंडम होना है 2017 में, या फिर मिडल ईस्ट के ऊपर जो उनके चैलेंजेस हैं, रशिया है, क्लाइमेट चेंज है, ट्रेड है, तो ये चार पांच चैलेंजेस को किस तरह से ये देखेंगे। एक तो ये है कि यूरोपियन यूनियन के हवाले से अगरचे जो प्राइम मिनिस्टर कैमरून की है वो पॉलिसी वो यही है कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहना चाहेंगे, वो उसकी उसके लिए उसके फेवर में है, लेकिन ये है कि जब वो कमिट कर चुके हैं इन आउट तो थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजेस आएंगे। उन्होंने कहा कि वो एक बेहतर डील लाने की कोशिश करेंगे ब्रिटेन के लिए, तो अब उनका जो ज्यादातर फोकस होगा वो ब्रसल्स के साथ उस नेगोशिएशन में होगा। बाद में फिर उन्होंने अपना वो प्रोग्राम अपने इलेक्टोरेट को भी सेल करना होगा कि 2017 के रेफरेंडम के लिए, तो वो सारी की सारी जो है उनकी जो जो एनर्जीज है सारा को सारा उनकी गवर्नमेंट का फोकस वो सारा इन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो स्कॉटलैंड का इशू है, जिस तरह के अभी हमारे दिल्ली से दोस्त बता रहे थे कि मतलब स्कॉटिश नेशनल पार्टी का राइज है, जिसकी जाहिर बात है वो भी एक अपना मतलब थोड़ा सा इससे बेनिफिट गेन करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें वामिल मिलके ब्रिटेन को, जो कि ऑलरेडी एक डिक्लाइनिंग पावर है, उसको इनवर्ड फोकस कराएगी। उसका फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा पहले से ही काफी वीक है, जिसकी वजह जो अब मुझे मजीद वीक होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब ब्रिटेन पहले की तरह ना तो एक फाइनेंशियल या मिलिट्री सुपर पावर है, कुछ पॉलिटिकल क्लाउड था वो भी, क्योंकि जो आपकी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनमें उनको वो उसको फर्दर डिमिनिश करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया वास्ते साहब। जनाब अवामिल क्या रहे हैं ये जो नतीजा सामने आया है, इसमें कंजर्वेटिव पार्टी की मकबूलियत बढ़ी है, डेविड कैमरॉन पे बरतानवी अवाम का एतमाद बढ़ा है, या अवामिल कुछ और है?
खूबसूरत सवाल है आपका। देखिए, जैसा कि जब हम लोग कोई निसाबी इम्तिहान दे रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज़हीन होते हैं और अपने मज़मून पर बहुत दस्तरस रखते हैं, वो इम्तिहानी टेक्निक में कमी की वजह से, ना जानने की वजह से अपने जो ट्रांसलेट नहीं कर सकते अपनी जहानत को जो कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ है, और कम नंबर ले लेते हैं। और वो बच्चे जिनको इम्तिहानी टेक्निक आती है वो ज़्यादा नंबर ले लेते हैं इसके बजाय के इसके बावजूद कि उन्होंने कम पढ़ा होता है। इलेक्शन में और जमहूरियत में आपको ऐसा बहुत दफ़ा और बहुत मुल्कों में नज़र आएगा। अगर आप गौर करें तो ये देखें कि 5 मिलियन वोट मिला है यूकिप और ग्रीन पार्टी को अगर आप मिलाएं।
जी।
अगर आप सिर्फ यूकिप का वोट देखें तो तकरीबन 3,58,000, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन 3,58,000 या 60,000 वोट मिला है यूकिप को, और उनके जो एमपी इलेक्ट हुए हैं एक या दो इलेक्ट हुए, एक एमपी इलेक्ट हुए, एज कंपेयर टू 58 एमपी इलेक्ट हुए हैं ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी के, और उनको टोटल वोट मिला है 1,57,000-58,000। अब आप ये देख लीजिए कि अगर डेमोक्रेसी को सही तौर पर और फेयरर इलेक्शन या उस हवाले से देखा जाए कि अगर वोट की गिनती और वोट की तादाद के हिसाब से देखा जाए, तो ये कैसे मुमकिन है कि जनाब जिनको जिस पार्टी ने 3 लाख वोट लिया हो या ग्रीन पार्टी से मिला के जिनके पास 5 मिलियन वोट हो, उनकी तो हों 3 या 4 सीट्स उस असेंबली में, और जिन्होंने 1.5 लाख वोट लिया है उनकी सीट्स हों 58 उस असेंबली में। तो इलेक्शन का जो पूरा मामला है, जो ये सब हुआ है, इसमें यकीनन एक तो जो है यहाँ पे कहते हैं कि अनफेयर सिस्टम है इस हवाले से कि पूरी ट्रांसलेट नहीं होती अवाम की उमंगों की तर्जुमान जो ये इलेक्शन बॉडी बनती है बाद में, और जो जिस तरह से ये चुने जाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात हुई है वो ये हुई है कि यूकिप को सज़ा मिली है, सॉरी लिबरल डेमोक्रेट्स को सज़ा मिली है उनके उन वादों की जो वो ना निभा सके, और ख़ास तौर पर जिसको एक आप सफ़ेद झूठ कह सकते हैं कि उन्होंने ये वादा किया था कि वो तलबा की जो फीस है उसको नहीं बढ़ाएंगे, और उन्होंने ये मिलके बढ़ाई, तो उस वक्त जो बच्चे यूनिवर्सिटी या उन इदारों में थे उन तमाम ने एन ब्लॉक जो है वो वोट दिया है अब कंजर्वेटिव्स को, या कम से कम लिबरल डेमोक्रेट्स को वोट नहीं दिया, तो उनको तो सबसे बड़ा ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान, जैसा कि दूसरे तजयकार भी कह रहे थे कि ये बात हुई कि जब आपकी तमाम पॉलिसीज कंजर्वेटिव्स की ही पॉलिसीज हैं तो फिर आप में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिस्टिंग्विश रह गए, किस तरह से आप अपने आप को डिस्टिंग्विश करेंगे कंजर्वेटिव पार्टी के साथ। तो लोगों ने इस मरतबा ये सोचा कि बजाय इसके कि हम एक कमजोर कोलेशन बनाएं, हम एक मजबूत और सिंपल मेजोरिटी वाली कंजर्वेटिव पार्टी को हुकूमत को मौका देते हैं। और जहां तक लेबर की बात है, लेबर ने वो जो खौफ यहां पर मकामी आबादी के अंदर पैदा हुआ हुआ है लेबर की उन पॉलिसीज की वजह से, खासतौर पर जो उनकी इमिग्रेशन की पॉलिसी रही या खासतौर पर जो उनकी एंटी ऑस्टेरिटी मूव रही, उसको लोगों ने नापसंद किया। लेकिन एक बात मैं सिर्फ शायद आपके चैनल पर ही कह सकता हूं, शायद और जगह कहना मुश्किल हो, कि लोगों ने एड मिली बैंड को पसंद नहीं किया। एड मिली बैंड की पर्सनैलिटी में शायद वो कैरिज्मा नहीं था जो उस जमाने में चाहे जितना मर्जी झूठ बोलने वाला शख्स हो टोनी ब्लेयर में मौजूद था। और मैं समझता हूँ कि कुछ हल्के धीमी आवाज़ में उनके इस बात पर भी एतराज़ करते रहे कि ये फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के भी सदर हैं। मैं नहीं समझता कि बहुत मेजॉरिटी ने इसको महसूस किया हो, लेकिन जिन थोड़े बहुत लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ पर, चूँकि कागज़ पर ये बात कहना या टेलीविजन चैनल पर ऐसी बात करना काफ़ी मुश्किल बात है, तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता दबी जुबान में इस बात का ज़रूर इजहार किया कि वो शायद किसी ऐसे शख्स को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ना देखना चाहें जिसके पास एक ऐसी जमात के ये ओहदे भी मौजूद हों। और तीसरी बात एड मिली बैंड की ये रही कि उन्होंने लोगों ने ये समझा कि जो शख्स अपने भाई की पीठ में छुरा घूम सकता है या अपने भाई के साथ ये कर सकता है, और चूंकि जिस जमाने में इन दोनों भाइयों का कॉन्टेस्ट हो रहा था तो शायद एक यूनियन के साथ बार्गेन की वजह से ये लेबर पार्टी के सदर मुंतखब हुए थे, वो भी लोगों को पसंद नहीं आई बात। तो बुनियादी तौर पर इसमें एड मिली बैंड का भी अपना भी ज़ाती तौर पर बहुत कसूर मुझे नज़र आता है कि उनको इस बात को समझना चाहिए था कि उनके अंदर वो शायद क्वालिटीज नहीं है जिसकी वजह से वो लेबर को या डेविड कैमरॉन के सामने खड़े होकर लोगों को मुतासर कर सकें। तो बहुत सारे चूंकि अवामिल हैं, किसी एक खास बात पर जाहिर है हम उंगली नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम बहुत सारे अवामिल को जांच पड़ताल करें तो उनमें ये तीन चार अवामिल आपको खास तौर पर नजर आएंगे। एक, उनकी पॉलिसीज जो हैं उनसे लोग बहुत मुतासर नहीं थे। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि फ्रेंड्स ऑफ इसराइल का भी प्रेसिडेंट रहा है ये एड मिलिबांड है। और तीसरी बात ये कि लेबर की जो एंटी ऑस्टेरिटी मूव है, चूंकि लोग समझते हैं कि आज बरतानिया जो है वो जिस मौशी बहरान का बहरान में दो चार है उसकी जिम्मेदारी लेबर पे है, तो लेबर और यूकिप की ये बात। लेकिन जो एसएनपी की बात है ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इस रुझान को बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा कि क्यों आज एक खास फेडरेशन के अंदर एक खास पार्टी जो है वो इस तरह से इतने ज़्यादा वोट लेकर सामने आई है। आपको आप मालूम होगा कि पाकिस्तान में जब ये सूरत हाल ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में हुई, जब ईस्ट पाकिस्तान में तमाम सीट्स जो हैं वो शेख मुजीब रहमान की पार्टी ने जीत ली, शायद एक आधी सीट पीपल्स पार्टी की थी और पीपल्स पार्टी की वहाँ कोई सीट नहीं थी और मुजीब रहमान की पार्टी की यहाँ पर कुछ ज़्यादा सीट्स नहीं थी, तो उस वक्त वो मशहूर सच्चा या झूठा नारा लगाया गया कि तुम उधर और हम इधर। तो ये बात बहरहाल यहाँ ये तो नहीं होगा, लेकिन ये बात एक खास जहनी झुकाव की तरफ तो यकीनन शदीद इशारा करती है और हम तमाम लोगों से जो तजियाकार हैं उनको तवज्जो दिलाती है कि वहाँ पर शायद सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो ज़्यादा जड़ें पकड़ेगी और ये रुझान बढ़ेगा वहाँ पर।
बहुत बहुत शुक्रिया वासी साहब, और नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। शाही साहब, जनाब आप क्या कहते हैं कि क्या यह समझा जाए कि बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी की मकबूलियत बढ़ी है?
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया मुझे याद आया, मैं उसको मेंशन करना चाहता हूं आपके साथ। आज से 2 साल पहले वहाँ पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी के से में जो कुछ सेफोलॉजिस्ट थे और कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक सर्वे एजेंसीज की, वहाँ की बहुत बड़ी सर्वे एजेंसीज है, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक सर्वे किया। वो परसेप्शन सर्वे था जिसमें वो ब्रिटेन में सॉरी इंग्लैंड में सिर्फ बाकी लोगों से पूछ रहे थे कि जो कॉमन इशूज़ हैं उनके बारे में उनके परसेप्शंस क्या हैं और रियलिटीज़ क्या हैं। मसलन कि उनसे पूछा गया कि ये जो एक सरकार जिस तरह से मदद करती है वालों की, इसको सोशल सिक्योरिटी के जो का जो पैसा होता है उसमें एक लोगों में वहाँ पे एक खासकर जो वाइट्स हैं उनमें एक ये है कि जी उसमें मैक्सिमम पैसा जो है वो गबन कर देते हैं, यानी लोग उसको कुछ फ्रॉड करते हैं उसके साथ और पैसा लेके निकल जाते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि प्रति 100 पाउंड कितना पैसा जो है वो ऐसे ही निकल जाता है, यानी जिसका घोटाला होता है। तो जो पब्लिक परसेप्शन था वो उन्होंने कहा कि जी 100 में 25 पाउंड, और जो इन्वेस्टिगेशन थी उन्होंने कहा कि जी 100 पाउंड में सिर्फ 70 स्टर्लिंग जो है वो उसका घोटाला होता है। फिर उनसे पूछा गया आपको क्या लगता है कि इमिग्रेंट्स जो हैं, यानी साउथ एशियन या बाकी आजकल पोलिश इमिग्रेंट नॉर्दर्न इंग्लैंड में काफ़ी हैं, इनकी तादाद पूरे इंग्लैंड के पॉपुलेशन की क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि 30% होगी, और जबकि 15% अगर पूरा मिला के लीगल इलीगल सब मिला लें तो 15% उनकी पॉपुलेशन बनती है। तो बेसिकली एक सेट वहां पे 40 सवालों का पूछा गया और पाया गया कि उन 40 में से 40 सवालों के जो जवाब थे वो मेजॉरिटी लोगों ने गलत दिए, यानी उनके परसेप्शंस जो थे वो उन रियलिटी से कई गुना ज्यादा आउट ऑफ वे थे। आप इस चीज को आप ध्यान में रखिए, उसके बाद देखिए कि इसका असर जो है वो तो लोगों के परसेप्शन का असर ही इलेक्शंस पे पड़ता है। अब लेबर पार्टी की मैं बात करूं, अगर एक कॉमन लॉजिकल विजडम क्या कहती है, लॉजिकल विजडम ये कहती है कि अगर अल्ट्रा राइट पार्टी कोई इमर्ज होती है, यानी यूकिप जैसी कोई पार्टी इमर्ज होती है, तो वो वोट किसका काटेगी, वो काटेगी राइट का, यानी जो कम राइट है उसका वोट अल्ट्रा राइट लेके जाता है। लेकिन आप जब कंस्टिट्यूएंसीज वाइज कंस्टिट्यूएंसीज कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूकिप ने वोट काटा है लेबर का, यानी देखें सेंटर लेफ्ट पार्टी की वोट्स जो है वो अल्ट्रा राइट ने काट ली। अब ये बड़ा चौंकाने वाली बात है, ये ऐसा देखने को नहीं मिलता, कम से कम थर्ड वर्ल्ड में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये डिपार्चर इतना, जो पेंडुलम इतना बड़ा स्विंग नहीं करता, पर उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि आज के दिन में यूकिप के वोटर्स कौन हैं? यूकिप के वोटर्स वो हैं जो वर्किंग क्लास वाइट्स हैं, यानी लेबर यूनियन में से जो वाइट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको ये बताया गया कि इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वो तुम्हारा जॉब छीन रहे हैं और उनको हम भगाएंगे और तुम्हारा जॉब तुमको वापस करेंगे। अब आपको पता है जब पहले ही परसेप्शन ये था कि जी 25% या 30% है पूरे इंग्लैंड के पॉपुलेशन के, वो जबकि 15% थे, तो वैसी स्थिति में जब आप र्यूमर मॉन्गरिंग करते हैं तो उसका असर जो है वो और मल्टीपल हो जाता है। तो ये लेबर और ट्रेड यूनियंस जो कि नॉर्मल सिनेरियोज में जिनकी वोट्स जाने चाहिए थे किसको, लेबर पार्टी को, क्योंकि ये ट्रेडिशनली लेफ्ट के वोट होते, वो एकाएक स्विंग करके चली गई अल्ट्रा राइट, क्योंकि उनको ये डर दिखाया गया कि तुम्हारी जो ये हालत हुई है इनके कारण हुई है। तो एक एजेंडा सेटिंग जो हम लोग मीडिया में समझाते हैं कि एजेंडा सेटिंग सेट करना, यानी एक मैसेज को अक्रॉस भेजना और एजेंडा को सेट करना, कहीं ना कहीं उस एजेंडा को सेट करने में यूकिप जो है वो सबसे आगे रही है। उसने ही फोर्स किया कंजर्वेटिव पार्टी को कि वो और अल्ट्रा राइट हो, और उसने फोर्स किया लेबर को भी और लिबरल डेम को भी कि वो भी लेफ्ट सेंटर से सेंटर हो जाए, और सबके अंत में ये हुआ कि वो अपनी मैसेज को सक्सेसफुली भेजने में कामयाब रहे, बाकी अपने मैसेजेस को भेज नहीं पाए। जैसा कि हमारे दोस्त बोल रहे हैं लंदन से कि सही बात है कि आप हो सकता है इक्वली आप टैलेंटेड हो, लेकिन एग्जाम के दिन शायद आपको ना पता हो कि एग्जाम में कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पे आप देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम है ना कि आप अपने मैसेज को अपने टारगेट ऑडियंस में कितना इफेक्टिवली सेंड कर रहे हैं। उस मैसेज को लेबर पार्टी अपने टारगेट ऑडियंस यानी व्हाइट वर्किंग मेल में और ट्रेड यूनियन यानी व्हाइट ट्रेड यूनियन मेंबर्स में नहीं भेज पाई। जहां तक माइग्रेंट्स का सवाल है, उसके वोट हमेशा लेबर को मिलते रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी और भी बाकी जो हैं या पोलिश माइग्रेंट भी हैं, वो उनको वोट देते रहे और वो देते रहेंगे, लेकिन ये वोट अभी इतनी तादाद में नहीं है जिस तादाद से ये इनको इफेक्ट करे। दूसरी एक प्रॉब्लम है कि जब ये तो हमने एक ईगल आई व्यू लिया, एक लार्जर हम व्यू ले रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है जिसकी भी अभी बात उन्होंने की, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तो मैटर करता है ना। वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उसमें बिरादरी का सिस्टम है, जो इंडियन कम्युनिटी है उसमें कास्ट का सिस्टम है, ये फैक्टर्स भी तो हैं। देखे 13 मुस्लिम MP जीत के आए हैं इस बार वहां पे, जिसमें 3 जो है कंजर्वेटिव पार्टी से जीत के आए हैं। कहां से जीत गए वो, कैसे जीते कंजर्वेटिव पार्टी से, क्यों, क्योंकि बिरादरी भी वर्क करती है, वो सिस्टम भी है। इंडियंस जो है वो उसमें, उन्होंने कंजर्वेटिव को इस बार काफी कैंपेन हुई है क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने पिछले दफा एंटी कास्ट बिल पे वोट को नहीं होने दिया, तो उन्होंने जो कास्टिस्ट यानी अपर कास्ट हिंदूज हैं उन्होंने कैंपेन किया कि आप कंजर्वेटिव्स को वोट करिए क्योंकि ये प्रो कास्ट हैं। तो देखें जो एक जिसको हम माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी वाइज, उसको भी मद्देनजर हमें देखना पड़ेगा कि कई चीजें कई फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करती है, तभी जाके हम एक होलिस्टिक व्यू जो है इस इलेक्शन का ले पाएंगे।
बहुत शुक्रिया शाही साहब। बाकर सज्जाद साहब, अब आते हैं इस इलेक्शन के नतीजे की तरफ। बर्तानिया के अंदर नतीजे के असरात क्या मुरतब होंगे?
अरे इस तरह से है कि मैंने जिस तरह के पहले भी कहा आपको कि एक तो जो है कि ये मतलब मैं इसको देख रहा हूँ, जो चैलेंजेस आपको पहले भी मैंने अपनी जो बात हुई है उसमें जिक्र किया कि उनके लिए इंटरनली चैलेंजेस बढ़ेंगे। स्कॉटिश नेशनल पार्टी एक दफ़ा फिर से शायद रिफ्रेंडम की तरफ जाने की कोशिश करे या लोकल गवर्नेंस पर अपना ज़्यादा एम्फेसिस लाए, तो वो एक चैलेंज स्कॉटलैंड की तरफ से उनको ज़रूर मिलेगा, जो कि बड़ा सीरियस थ्रेट भी होगा, जिस तरह से वो बाकी दोस्त भी लंदन से और दिल्ली से कह रहे हैं कि एक काफ़ी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट हो सकती है ब्रिटेन के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखें कि इसके ऊपर ये ट्रेड के ऊपर यहाँ पर जो अगर चाहिए अपना क्रॉस अटलांटिक की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं उसकी अगरचे ब्रिटेन को फायदा भी है लेकिन उसकी बहुत ज्यादा अंदर क्रिटिसिज्म भी है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के हवाले से उनके अंदर जो है कि उनको वहां पे भी एक चैलेंज का सामना होगा अगर वो रिफ्रेंडम जब 2017 से पहले कराते हैं। तो ये सारी चीजें एक मैं देख रहा हूँ कि अब इनका जो ये टेन्योर होगा ये एक अगरचे इनको एक मेजोरिटी मिल गई इनको एक फ्री हैंड मिल गया कि वो जिस तरह से चाहे रन करे लेकिन ये काफी एक डिविजिव किस्म की इनको ये गवर्नमेंट होगी काफी कंट्रोवर्सीज का इनको सामना होगा इस वक्त जो आते भी है यहां तक कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो मुझे वहां से सुनने से लोगों से पता चला है कि वो कंजर्वेटिव में भी स्प्लिट होगी क्योंकि अभी जैसे ये वाला डिसीजन उनका ले लें कि जो इन आउट रिफ्रेंडम के ऊपर उन्होंने एग्री किया तो उन्होंने अपने ही अंदर की पार्टी के अंदर से जो डेवलप प्रेशर हो रहा था कि रिफ्रेंडम कराएं ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी लेकिन फिर भी उन्होंने इसको चीज को कंसीड किया और अभी उस रिफ्रेंडम की तरफ जा रहे हैं जिसपे उनका काफी ज्यादा तवज्जो उनकी इस पे रहेगी। क्लाइमेट चेंज के हवाले से अब जो है वो एक चैलेंज आएगा तो मतलब ये सारी चीजें एक चैलेंजिंग होगी इतनी मतलब स्मूथ सेलिंग नहीं होगी जैसा कि आपको फिगर्स बता रहे हैं कि तकरीबन 100+ की उनके पास एक मतलब लीड है या उनमें मेजोरिटी है हाउस के अंदर वो जिस तरह से आपको एक चीज सामने आती है कि शायद ये नेक्स्ट 5 ईयर्स बिल्कुल एक स्मूथ सेलिंग होंगे लेकिन इंटरनल चैलेंजेस इस वक्त कैमरून गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और वो काफी हद तक खतरनाक भी हो सकते हैं खास करके स्कॉटिश कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें।
बहुत बहुत शुक्रिया जी वासी साहब। मुल्क के अंदर किस किस्म की मुश्किलात डेविड कैमरून की हुकूमत को दामनगीर हो सकती हैं और उनके सामने चैलेंज बन सकती हैं?
जी हाँ, सबसे पहले तो जो भी मुश्किलात किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी में सिंपल मेजॉरिटी को होती हैं वो डेविड कैमरून को होंगी, जिनमें से सबसे बड़ी ये बात है कि अगर विद इन पार्टी जरा सा भी किसी बिल पर या किसी मूव पर इख्तलाफ होता है और 50 से 60 एमपी या उससे भी कम लोग जो है वो किसी और पार्टी के साथ होते हैं या वोट से एब्सटेन करते हैं तो डेविड कैमरून को यहाँ पे पार्लियामेंट में कानून साजी में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। और अगर एन ब्लॉक कुछ लोग ज़्यादा पार्टी छोड़ने की बात करते हैं या कम से कम वहाँ पे एब्सटेन करते हैं तो डेविड कैमरून को बाहर से जो मदद लेनी पड़ेगी, इस वक्त डेविड कैमरून के वहाँ पर कोई खास दोस्त जो हैं वो पार्लियामेंट में हमें नज़र नहीं आ रहे जिनकी तरफ वो रुजू करेंगे, तो क्या वो SNP की तरफ जाएंगे या वो कहाँ से वो मदद हासिल करेंगे जो उनको ज़रूरत होगी अगर वो वहाँ पर कानून साजी करना चाहेंगे। और तीसरी बात, जैसा कि हमारे दोस्त भारत से फरमा रहे थे कि अगर आप तजिया करें तो तकरीबन इस वक्त इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि मैं लिख के लाया था 41 MPs जो हैं वो नॉन वाइट हैं पार्लियामेंट के अंदर और 27 जो हैं वो मेरा ख्याल है कि लेबर के हैं और बाकी जो हैं वो ज़ाहिर है कंजर्वेटिव के उससे कुछ कम हैं, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं जो पार्लियामेंट में आते हैं एशियन से या नॉन वाइट क्लास से, ये तमाम लोग चूंकि मैं यहाँ रहता हूँ मैं देखता हूँ कि उन लोगों को सीट्स दी टिकट्स दी जाती हैं पार्टी की तरफ से जहाँ पर श्योर हों कि ये बन जाएंगे। इसी वजह से जितने भी नॉन वाइट कैंडिडेट्स ने इस दफ़ा दोबारा इलेक्शन लड़ा है उसमें से सिर्फ 2 ने अपनी सीट्स लूज की है, 27 में से 25 लोग जो हैं नॉन वाइट्स वो अपनी सीट्स पर वापस आए हैं चाहे वो लेबर के हों या कंजर्वेटिव के हों। तो इससे ये बात पता लगती है कि यहाँ पर जो वाइट है उसका इतना बड़ा ये मसला नहीं है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन नॉन वाइट कर रहा हो, लेकिन नॉन वाइट्स का बहरहाल अपना एक बहुत बड़ा मसला होता है, वो उसके उनके अपने जैसे कि फरमा रहे थे वो कि ये देखने वाले मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पे मुसलमानों में ये देखा जाता है और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब यहाँ पर एंटी गे पार्लियामेंट में बिल पास हुआ कि उनके खिलाफ बात नहीं होगी या गे मैरिजेस की जब बिल पास हुआ तो मुसलमानों ने अपने MPs से जाके ये कहा कि आप जो है इसमें वोट ना दें, तो हमारे सिर्फ मेरा ख्याल है कि 2 लोग थे जिन्होंने एब्सटेन किया और एक जो है वो उस वक्त मुल्क से बाहर थे, बाकी जो है 10 या 11 जो MPs हैं उन्होंने तमाम ने वोट दिया गे मैरिजेस के हक में। तो मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ के जो अपने मसाइल हैं वो ज़ाहिर सामने रहते हैं तो ये मुश्किलात जो है वो पेश आ सकती हैं।
वास्ते साहब हमारे पास वक्त चूंकि कम रह गया इसलिए अगला सवाल भी हम आप ही से करेंगे, 1.5 मिनट का वक्त हमारे पास है। बैन अलाक्वामी असरात क्या मुरतब हो सकते हैं?
जी, बैन अलाक्वामी असरात ये मुसर हो सकते हैं जो बाकर सजाद जैसे कह रहे थे कि बरतानिया की कोई वैसे भी इस वक्त दुनिया में कोई बहुत ज्यादा सुपर पावर की हैसियत नहीं थी, और अगर अपने ही नेशन में इनकी कमजोर हुकूमत होगी तो पूरी दुनिया में जो इनकी जो इनके असर हैं और जो इनके ज़ेर असर ममालिक हैं उनमें भी इनका असर रसूख कम होगा, और जाहिर है जो बदकिस्मती है कि इसकी जगह जो है वो अमेरिका लेगा और अमेरिका का असर रसूख जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और बरतानिया को अपना असर रसूख कायम रखने के लिए इवन कॉमनवेल्थ में अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर वास्ती साहब। इसी के साथ हम बाकिर सज्जाद साहब और सौरभ कुमार शाही के भी शुक्रगुजार हैं, तीनों तजिया निगारों के ख्याल आपने मुलाहजा फरमाए। बहरहाल इस बार बरतानिया के पार्लियामानी इलेक्शन के जो नतायज हैं वो खिलाफ तवक्को और हैरत अंगेज थे, और यकीनन इसके बरतानिया के अंदर भी और बैन अलाक्वामी सतह पर भी कुछ असरात मुरतब होंगे, और वो असरात मुमकिन है कि बरतानवी हुकूमत के फेवर में ना हो। प्रोग्राम के बारे में हमें अपने नाजरीन की राय का भी इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।